From the Conference Center at
Temple Square के Conference Center, Salt Lake City के से ये 180वां semi-annual General Conference है Church of Jesus Christ of Latter-day Saints का. इसमें से व्यक्ता सहायक अध्यक्षों से इकट्ठा गए हैं और Tabernacle Choir द्वारा संगीत प्रदान किया जाएगा. ये प्रसारण एक सामाजिक सेवा के रूप में प्रसारित किया जाता है और इसके बिना इजाजत के प्रसारण करना वर्जित है.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
कीर्ति की पहली प्रेसिडेंसी के दूसरे काउंसिल प्रेसिडेंट डीटर एफ उक्टर सत्र को संचालित करेंगे.
Our dear brothers and sisters,
हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आपका इस अंतिम दिनों के यीशु मसीह के गिरजे के 180वीं अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन में स्वागत करते हैं. अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन जो सम्मेलन के अध्यक्ष, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं सत्र का संचालन करूं. हम गिरजे के सदस्यों और दोस्तों को हमारे आशीर्वाद और अभिनंदन देते हैं जो सभा में रेडियो, टीवी और इंटरनेट या प्रसारण के द्वारा भाग ले रहे हैं. सत्र के लिए संगीत Tabernacle Choir द्वारा प्रदान किया जाएगा. मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन से और बानी गुडलिफ ऑर्गन बजाएंगे. क्वायर फिर सभा को कम रिजॉइस गाकर शुरू करेगा. प्रार्थना फिर 70 के एल्डर लॉरेंस ए कॉर्बिज द्वारा की जाएगी. क्वायर फिर गाएगा लीड काइंडली लाइट.
Come rejoice the King of Our beloved and eternal Father in heaven, thy Son has said, come, follow me. It is, Father, with that purpose that we have gathered together here in this beautiful conference center and millions in chapels and in homes throughout the world. And it is with that purpose that we remember thee, we thank thee for the kingdom of God and for the life and mission of thy Son, Jesus Christ, on the earth. We are grateful for his atonement and resurrection, for his teachings and for his gospel. We are thankful, Heavenly Father, for the restoration of thy church and kingdom, and for all that has been put in place for this session of conference, for all of the preparations for this beautiful edifice and for the miracles of communication. We recognize, however, Father, that none of it will make any difference unless and except we be blessed by thy Spirit. And so we pray, Heavenly Father, that every one of us will feel of thy presence. We pray that every one will listen, that every one may hear thy word, that every one may follow thy Son, who is the way, the only way to thy holy presence. For this we humbly pray in the name of Jesus Christ. Amen.
We shall now be pleased
to hear from Elder Tom Perry or David Bednar. Elder Bednar ke baad hum 70 ke Elder Larry R. Lawrence se sunenge.
जैसे मैं 25 साल पहले जनरल कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, मैंने एक विजुअल एड का दिखाया जो मेरे पास खड़ा था. वो मेरे सबसे बड़ा पोता था. उसे हाल ही में उस समय एरोनिक प्रीस्टर देकर डीकन बनाया गया था. मैंने उस समय मेरा संदेश मेरी उसकी एरोनिक प्रीस्टर पाने के महत्व के बारे में दिया. मैंने अपने पोते से कहा, मैं इस दुनिया से की स्थिति से बहुत खुश नहीं हूँ जो तुम और दूसरे नवयुवक पा रहे हैं. जैसे तुम बड़े होते हो, हम जो बड़े हैं उनके पास इस दुनिया पर प्रभाव डालने का वक्त रहा है. पर मैं शर्मिंदा हूँ कि हमने इस दुनिया को ऐसे होने दिया है. इसकी वजह से तुम काफी लोगों से मिलते हो जिनके पास पारंपरिक मूल्य नहीं है. इसलिए दोस्तों का धूर प्रभाव शक्तिशाली होता है. हमने अपने घरों में रेडियो टीवी लाए हैं. वो सब मनोरंजन देते हैं, पर अधिकतम उन पर सुनी और देखी चीज नवयुवकों को ढंग से प्रेरित नहीं करती है. लगभग सभी बेकार हैं. तुम्हारे घर में एक बटन दबाने से तुम्हारे सही और गलत में भिन्नता देखने की शक्ति को मिटा रहा है. जैसे चीज बदलती है वो वैसे ही रहती है टेक्नोलॉजी के अलावा. मैंने सोचा कि मैं पूछूं कि एरोनिक प्रीस्टर के नव युवक जानते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर क्या है. जो उसके बारे में नहीं जानते हैं, उसे हम परिवार में कमरे में संगीत सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं. कल्पना करो, हमें उसके पास जाना पड़ता था, बल्कि आज उसे आप सब दूर ले जा सकते हैं. मैंने अपने पोते टेरी को ओल्ड टेस्टामेंट डैनियल से चार पाठ पढ़ाया. उसे अपने शरीर को साफ और सेहता रखना है, दिमाग को बड़ा कर समझदार बनाना है, दुनिया के प्रलोभनों से शक्ति से दूर रहना और चार भगवान में विश्वास करना है. स्क्रिप्चर की कहानियां कभी भी पुरानी नहीं होगी. वो तुम्हें उत्साह देंगे, चाहे तुम एक डीकन प्रेरित मिशनरी होम टीचर एलर्स कॉर्न प्रेसिडेंट या भगवान के द्वारा कुछ भी दिए बुलावा को पता हो. वो तुम्हें विश्वास साहस प्यार और भगवान में भरोसा का को सिखाएंगे. मैं खुशी से कहता हूँ कि टेरी ने 25 साल पहले दिए काम को बराबर से किया. उसने मेलकिज़ेडेक प्रीस्टहुड को पाकर एक मिशन पर सेवा की और हाल में एक एलर्स कॉर्न प्रेसिडेंट है. पिछले 25 सालों में कितना बदलाव आया है. मेरे कई पोते पोती बड़े होकर खुद माँ बाप बने हैं. इस गर्मी में मैं एक प्रीस्टहुड के बढ़िया के साथ एक कोलाई में खड़े होकर मेरे सबसे बड़े पर पोते को सर पर हाथ रख के उसको एरोनिक प्रीस्टहुड दी. वो आज मेरे साथ यहाँ खड़ी नहीं है, पर मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा और दूसरे नव युवकों के बारे में जो एरोनिक प्रीस्टहुड के हैं. एरोनिक प्रीस्टहुड को पाना एक खास आशीर्वाद है. इतिहास में वो बढ़िया दिन था जब इस धरती पर प्रीस्टहुड पुनर्स्थापित किया गया, ताकि आदमी वापस भगवान के सेवकों के रूप में पवित्र प्रीस्टहुड ऑर्डिनेंस कर सके. वो अप्रैल 1829 का पांचवा दिन था जब ओलिवर काउडरी जोसेफ स्मिथ ने हार्मनी पेंसिल्वेनिया आए. उन्होंने प्रॉफिट से प्राचीन ली बुक मॉर्मन के अनुवाद के बारे में पूछा. लेख की दिव्यदाता ने विश्वास कर उन्होंने अनुवाद में मदद करने की हां भरी. अनुवाद स्फूर्ति से हुआ जब उसने प्रॉफिट का हाथ बढ़ाया। 15 मई 1829 जोसेफ और ऑलिवर थर्ड नीफाई तक पहुंचे गए थे मसीह की पश्चिम हेमस्फीयर में आना और उनकी बपतिस्मा की सीखे देना। जैसे उन्होंने थर्ड नीफाई को पढ़ा उनके दिमाग बैप्टिज्म के बारे में सोचने लगे किस तरह का बैप्टिज्म सही है और किसके पास इस पवित्र ऑर्डिनेंस का शक्ति था। उन्होंने इस अहम प्रश्न का जवाब सोचा। उन्होंने प्रार्थना करके जवाब पाने का निश्चय किया और इसलिए वो सस्क्वहाना नदी के किनारे गए। एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ जिसने कहा कि वो जॉन द बैप्टिस्ट था और उसने जोसेफ और ऑलिवर को कहा कि वो पीटर जेम्स एंड जॉन के निर्देशन में कार्य कर रहा था। उसने उनके में सरों पर हाथ रखे कहा मेरे साथी सेवकों मसीह के नाम में मैं तुम्हें एरोन का प्रीस्ट देता हूँ जिसके पास दूतों के मिनिस्ट्री की चाबियाँ है और पश्चाताप का गॉस्पल है और पाप के धोने का बैप्टिस्मा कभी और इसे इस धरती पर कभी भी नहीं लिया जाएगा जब तक लीवाई के बेटे भगवान को एक ऑफरिंग देंगे। बाद में ऑलिवर ने बताया ये सोचो कि हमारे दिल में कैसी खुशी आई और हमने किसी आश्चर्य से घुटने ठेके जब हमने भगवान से पवित्र प्रीस्टर पाया। मनुष्यता भगवान की शक्ति के लिए सदियों से इंतजार कर रही थी जब एरोनिक प्रीस्टर की शक्ति इस धरती पर लौटेगी। डॉक्ट्रिन और कवेनेंट्स के 107 सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि छोटे प्रीस्टर एरोनिक क्यों कहलाता है। दूसरा प्रीस्टर एरोन का है क्योंकि उसे एरोन का उसके बीज की को दिया गया है। उसे छोटा प्रीस्टर क्यों कहा जाता है क्योंकि वो बड़े मेलकिज़ेदेक प्रीस्टर से जुड़ा है और उसके पास बाहरी ऑर्डिनेंस करने की शक्ति है। एरोनिक प्रीस्टर के पास दूतों की मिनिस्ट्री की और बाहरी ऑर्डिनेंसों की चाबी है और पाप के पश्चाताप कर बैप्टिज्मा की जो नियमों और आदेशों अनुसार है। एरोनिक प्रीस्टर के नव युवकों के पास भगवान के एजेंट हो प्रीस्टर जिम्मेदारी करने की शक्ति है और अनेक पास दूतों के मिनिस्ट्रिंग की चाबियां है। एरोनिक प्रीस्टर के नव युवकों में बयान देता हूं कि भगवान ने वादा किया है कि तुम्हें लायकता के अनुसार आशीर्वाद मिले अगर तुम पवित्र आत्मा की चेतावनी को सुन भगवान के निर्देशन अनुसार करोगे तो तुम्हें दूतों की मिनिस्ट्रिंग का आशीर्वाद मिलेगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में ज्ञान शक्ति आएगा। ये पक्का वादा है भगवान का। कुछ महीने पहले मैं एक फास्ट और टेस्टिमोनी मीटिंग में था। एक एरोनिक प्रीस्टर सलाहकार ने बयान दिया। उसके बयान ने मुझे एरोनिक प्रीस्टर के व्यक्ति के पास दूतों की मिनिस्ट्री की चाबी के नए महत्व को समझाया। इस सलाहकार ने वार्ड के एरोनिक प्रीस्टर को अनुभवों को बताया। जैसे वो गिरजा जा रहा था उसने दो डीकनों को सदस्यों के घर फास्ट ऑफरिंग के लिफाफा के साथ जाते देखा। उसे पसंद आया कि वो संडे का कपड़े पहनते और मर्यादा से काम कर रहे थे। वो फिर दो प्रस्तुतों के साथ एक घर गया ताकि वो अपंगों को सैक्रमेंट दे सके। और उन्होंने प्रीस्टर के काम को आदर से किया। फिर उस सलाहकार ने एक अनुभव को बताया जिसने उसके दिल को छुआ था क्योंकि एक प्रीस्टर ने उसे याद दिलाया कि मसीह के सच्चे मिनिस्टर होने का मतलब क्या होता है। एक नव युवक जो सभा को पानी का सैक्रमेंट दे रहा था एक व्यक्ति के पास आया जिसे डाउन सिंड्रोम था। उसकी वजह से वो व्यक्ति सैक्रमेंट पानी से नहीं ले पाया। इस नवयुवक ने तुरंत समझा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने उल्टे हाथ उस व्यक्ति से के सर को सहरा दिया और सीधे हाथ से उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसे उस व्यक्ति के चेहरे पर आभार आया, जैसे किसी ने उपसर मिनिस्ट्री करी हो। उसके बाद ये नवयुवक सभा को फिर पानी देने चला गया। सलाहकार ने उस समय की भावना को अपने बयान में बताया। उसने कहा कि वो खुशी से रोया और वो जानता था कि गिरजा अच्छे हाथों में था इन जवान प्यारे एरोनिक प्रीस्टहुड के युवकों के साथ। प्रेसिडेंट एज़रा टाफ़ बेंसन ने एक बार कहा, मुझे एक नवयुवक को दो जिसने विश्वास से गिरजा अपने आप को साफ रखा। मुझे एक नवयुवक दो जो जिसने अपने प्रीस्टहुड को बढ़ाया और ड्यूटी टू गॉड अवार्ड और ईगल स्काउट का स्तर पाया है। मुझे एक नवयुवक दो जो एक सेमिनरी ग्रेजुएट और उसके पास बुक ऑफ मॉर्मन का गहरा बयान है। मुझे एक ऐसा युवक दो और मैं तुम एक नवयुवक दूंगा जो भगवान के चमत्कार कर सकता है। इन नवयुवकों का माँ बाप हम आपका इन बच्चों का पवित्र प्रीस्टहुड के डॉक्ट्रिन को सीखने का जिम्मेदारी देते हैं।
To qualify for these blessings.
Bishopon, tum apni chaviyan se Aaronic priesthood ke nav yuvakon ke saath baithe unhe priesthood ki zimmedariyan sikhana hai. Ye zarur dekho ki har nav yuvak jo Aaronic priesthood ke paane ke liye ke layak hai, use sambandhit zimmedariyan aur aashirwad ko samjhe. उन्हें अपने प्रीस्टहुड को बढ़ाने दो, उन्हें जरूरी कार्य दे और उन्हें दूसरों की सेवा करने देने से। नवयुवकों, में तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम सच्चाई और अच्छे की नींव पे अपने जीवन को बनाओ। वो अकेली नींव है जो एक जीवन के बाद उन्नता तक रहेगी। तुम्हारा प्रीस्टहुड एक खास तोहफा है क्योंकि उसको भगवान देता है। उसे इस्तेमाल करो, पढ़ाओ और उसके लायक रहो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास उसकी शक्ति का एक खास बयान है। उसने मेरे जीवन में कई तरह से आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इस आशीर्वाद का सम्मान रखो। एरोनिक प्रीस्टहुड एक के हर ऑफिस में आगे बढ़ाओ, डीकन, टीचर और प्रीस्ट। अपने आप को मेलकिज़ेडेक प्रीस्टहुड के आशीर्वाद को पाने के लिए तैयार करो, जिसे तुम्हें मिशन पर जाने से पहले लायक हो पाना है। भगवान तुम उनकी सेवा के लिए तैयार करना चाहता है, खासकर जब तुम दुनिया भर उनके गॉस्पल को लोगों को बताओगे। मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम इस पवित्र प्रीस्टहुड को पाने के लिए तैयारी करोगे, वो तुम्हारे सर पर हाथ रखे आशीर्वाद देंगे। मैं ऐसा बयान देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
मेरा संदेश हमारे दैनिक जीवनों में पर मेहनत का है, ताकि हम पवित्र आत्मा को पा सकें। मैं भगवान की आत्मा को प्रार्थना करने निमंत्रण देता हूँ ताकि वो हमारी मदद कर सकें। दिसंबर 1839 में जोसेफ स्मिथ एलायस हिग्बी ने हिरम स्मिथ को मिजूरी के संतुर प्रत्याचार के बारे में लिखा। प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू में उन्होंने हमसे पूछा कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हमसे पूछा कि हमसे हमारे दूसरे धर्म में फ़र्क क्या है। जोसेफ और मैंने कहा कि हम बैप्टिज्म और सर पर हाथ रख पवित्र आत्मा की भेंट के रूप में अलग हैं। हमने सोचा कि बाकी सब पवित्र आत्मा की भेंट से जुड़ा था। भगवान के पूर्ण रूप का तीसरा भाग पवित्र आत्मा है। वो सभी सत्यों को बयां देती है। स्क्रिप्चरों में पवित्र आत्मा को दिलासा देने वाले शिक्षक और दूरदर्शी कहा गया है। पिता और बेटे से दूरदर्शन पवित्र आत्मा से आते हैं। वो पिता और उनके बेटे का संदेशक और गवाह है। पवित्र आत्मा को उस धरती पर लोगों को शक्ति के लिए स्थापित किया गया है। वो शक्ति बैप्टिज्म के बाद आ सकती है। वो गवाह है कि यीशु मसीह हमें बचाने वाले हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति से इन्वेस्टिगेटर मसीह की गॉस्पल की सच्चाई को जान सकते हैं। बुक ऑफ मोर्मन, पुनस्थापिकरण और जोसेफ स्मिथ के बुलावे के बारे में भी। पवित्र आत्मा की शक्ति सिर्फ मलकाजरिक पीस्टर के लोगों के द्वारा हाथ रख कर बैप्टिज्म से आ सकती है। भगवान ने कहा है पश्चाताप का बैप्टिज्म पाओ अपने पापों को धोने के लिए, ताकि तुम आग की बैप्टिज्म और पवित्र आत्मा को पा सको। और जो मेरे गिरजे में सर पर हाथ रखवा कर आते हैं, मैं उन्हें पवित्र आत्मा का उपहार दूंगा। अपोस्टल पॉल ने इसके बारे में एफिसियंस को जो बताया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया है? उन्होंने कहा कि उन्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि वो कैसे बैप्टिज्म को पाए हैं। उन्होंने कहा कि जॉन द्वारा। पॉल ने कहा कि जॉन ने पश्चाताप का बैप्टिज्म दिया है और कहा कि वे यीशु मसीह में विश्वास करें जो उनके बाद में आएंगे। जब उन्होंने ये सुना, वो यीशु मसीह के नाम में बैप्टाइज हो गए। और फिर पॉल ने उनके सिरों पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उनके पास आई। पानी का बैप्टिज्म गॉस्पल का पहला नियम है। उसके बाद आत्मा का बैप्टिज्म होना जरूरी है। प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ ने समझा है कि बैप्टिज्म का पवित्र नियम जिसके पवित्र आत्मा को पाने की तैयारी शुरू होती है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा काम शुरू करती है। अच्छे के नियमों के अलावा पवित्र आत्मा की भेंट किसी और रूप से नहीं आ सकती है। अच्छाइयों के नियमों का पालन करना अत्यंत अनुसार आवश्यक है। नए सदस्यों को कंफर्म कर पवित्र आत्मा की शक्ति देना एक सरल और शक्तिशाली चीज है। लायक मेलकाजरिक प्रीस्टहुड होल्डर्स अपने हाथों को उस व्यक्ति के सर पर रख उसे नाम से बुलाते हैं। फिर पवित्र प्रीस्टहुड की शक्ति और मसीह के नाम में उस व्यक्ति को द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स के गिरजे के सदस्य के रूप में पक्का किया जाता है और ये कहा जाता है कि पवित्र आत्मा को तुम पाओ। मेरे भाई और बहनों, इस नियम की सरलता से हम इसके महत्व को भूल सकते हैं। ये चार शब्द पवित्र आत्मा को पाओ एक छोटी कहावत नहीं है, पर वो प्रीस्टहुड से आदेश है कि हमें कार्य करना है। हम पे कार्य नहीं होने देना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में सिर्फ सर पर हाथ रखकर उन चार शब्दों को पाकर ही नहीं आती है। जैसे हम कोशिश करते हैं, जीते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और उसकी आत्मिक भेंटों को भी पाते हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा को पा लें और उनके आत्मिक भेंटों को भी। एक मनुष्य को क्या लाभ हो अगर उसे भेंट दी जाए और उसे स्वीकार नहीं करे? वो भेंट और भेंट देने वाले दोनों से खुश नहीं होता है। हम कैसे भगवान के रूप से तीसरे सदस्य की संगत कैसे पाएं? हम कैसे भगवान के तीसरे भगवान के रूप में तीसरे सदस्य की संगत पाए। मैं पवित्र आत्मा पाने की सच्ची की पहली चीज हमें जो करनी है वो सच्ची इच्छा उत्पन्न करनी है। दूसरी चीज जो करनी है उसे ठीक से अपने जीवन में निमंत्रण देना है। और तीसरी चीज जो करनी है भगवान के नियमों का पालन करना है। हमें पहले पवित्र आत्मा को पाने की सच्ची इच्छा उत्पन्न करनी है। हम उसके बारे में मसीह के चेलो बुक ऑफ मोर्मन से सीख सकते हैं और 12 लोगों को सिखाया और उन्होंने धरती पर घुटने टेकने को कहा ताकि वो पिता से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर सके। और उन्होंने प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा उन्हें प्रदान की जाए जो उन्हें सबसे ज्यादा जिसकी चाहत थी। क्या हम उस प्रकार पवित्र आत्मा की संगत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, या हम उसे भूलकर दूसरे काम करते हैं हमारे दैनिक जीवन के कामों में और सबसे महत्वपूर्ण भेंट को मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना पहले भगवान के हमारे जीवन में संगत से की इच्छा से उत्पन्न होता है। जैसे हम भगवान के निमंत्रण देते हैं हम उनकी आत्मा को पहचान सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें उन्हें अपने जीवनों में निमंत्रण देना है उसी तरह जैसे वो हमारे साथ व्यवहार करता है। पवित्र आत्मा के साथ का निमंत्रण कई तरह से हो सकता है, नियमों के पालन से, अकेले और पारिवारिक प्रार्थना से, स्क्रिप्चरों की मेहनत के द्वारा पढ़ाई से, पारिवारिक संबंधों को शक्ति देने के साथ जो दोस्तों के साथ भी हो सकती है, और अच्छे सोच विचारों को सोचकर, काम करके और भाषा बोलकर, और घर मंदिर गिरजा में पूजा करके, और नियमों को तोड़कर प्रार्थना नहीं करके, अच्छा नहीं सोचकर, स्क्रिप्चर नहीं पढ़कर, गलत भाषा बोलकर हम आत्मा का की पवित्रता को हमसे दूर कर सकते हैं। जैसे किंग बेंजामिन ने अपने लोगों को सिखाया कि आपको ये पता है और सिखाया गया है और अगर आप इसके विपरीत करते हैं तो आप भगवान की आत्मा से दूर होते हैं, फिर वो आपको समझ के रास्ते में निर्देशन नहीं दे पाएगी, वो आपको आप और उससे आशीर्वाद नहीं पा पाओगे। भगवान के नियमों के पालन पवित्र आत्मा को पाने में अहम है। हमें इसे हर हफ्ते याद दिलाया जाता है जैसे हम सैक्रमेंट प्रार्थना करते हैं और ब्रेड और पानी को लेते हैं। जैसे हम इसी मसीह के नाम को अपने पर लेने का वादा करते हैं और उनके नियमों को रखने का भी, तब हमें वादा किया जाता है कि उनकी आत्मा हमारे साथ रहेगी। इस प्रकार यीशु मसीह के गॉस्पल का हर भाग हमें पवित्र आत्मा की संगत देने की कोशिश करता है। प्रार्थना और स्क्रिप्चर पढ़ने के कारणों को देखो। हम स्वर्गीय पिता से उनके बेटों के नाम में प्रार्थना कर सकते हैं और हम स्क्रिप्चरों की रोशनी और ज्ञान को पा सकते हैं।
In the standard works. But please remember,
पर ये याद रखो कि ये पवित्र आत्मा की संगत के लिए पहला करना जरूरी है कि हम स्वर्गीय पिता और उनके बेटे को याद रखें और इसी प्रकार हमें पवित्र आत्मा की संगत आएगी। टेंपल और गिरजे में पूजा करने के बारे में सोचो और हमारे रविवार की सभाओं के बारे में भी हमें टेम्पल में मृत्यु और गिरजों के परिवारों और दोस्तों की सेवा हम करते हैं जिन वार्डों ब्रांचों में रहते हैं, और हमारे भाई और बहनों में हम अच्छी संगत पाते हैं। पर हम ये सब इकट्ठा हो इसलिए कर सकते हैं ताकि हम पवित्र आत्मा के निर्देशन और आशीर्वादों को पा सकें। प्रार्थना, पढ़ाई, आज्ञा पालन अलग अलग गॉस्पल में कार्य नहीं है। पर हर किसी से पवित्र आत्मा को पाने की खोज में मदद मिलती है। ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पा सकें। भगवान से आए नियम और गिरजे के नेताओं से पाए राय पवित्र आत्मा के पाने से जुड़ी हैं। गॉस्पल की सभी सीखें पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में पाने से जुड़ी हुई हैं। सारी गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं। तुम और मैं बुक ऑफ मॉर्मन के लड़ाकों की तरह होना है जिन्होंने हर शब्द को पूर्ण रूप से किया पूरे विश्वास के साथ, और उन्हें भगवान को हर दिन दिल से याद किया और उनके नियमों को रखा, हमेशा उनके उन पे कर्ण किया और उनके न्यायों को भी। भगवान ने कहा है कि चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स इस धरती पर अकेला जीता गिरजा है। ये पुनस्थापित गिरजा सही है क्योंकि ये मसीह का गिरजा है। वो रास्ता है, सत्य और जीवन है, और ये जीता गिरजा है क्योंकि पवित्र आत्मा की भेंट इसके पास है। हम कितने आशीर्वादित हैं कि हम एक धरती पर उस समय हैं जब उस पर प्रीस्टहुड है और हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। शहीद होने के कई साल बाद प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ प्रेसिडेंट ब्रिगम यंग के सामने प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें ये बोला, लोगों को नम्र विश्वास वाले रहने को कहो और भगवान की आत्मा का पालन करने करो और वो तुम्हें रास्ते दिखाएंगे। इस छोटी वाणी से पलटू नहीं, वो तुम्हें दिखाएगी कि तुम्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। वो राज्य के फलों को तुम्हें देगी। भाइयों को कहो कि वो दिलों को खुला रखें ताकि पवित्र आत्मा उनमें आए और उनके दिल उसे पाने के लिए तैयार होंगे। वो पवित्र आत्मा की भिन्नता को महसूस कर सकते हैं सभी दूसरी चीजों से। वो उनकी आत्माओं में शांति और खुशी लाती है और नफरत और पार को दूर भगाती है। फिर उनके दिल में पूरी इच्छा होगी कि वो अच्छा करें और भगवान के राज्य को आगे बढ़ाएं। अगर वो भगवान की आत्मा को सुनेंगे तो वो और सही करेंगे और सही दिशा में जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को अपने दैनिक जीवनों में निमंत्रण देंगे कि हम भगवान के नियमों का पालन कर पवित्र आत्मा को पाएंगे। मैं वादा करता हूं कि प्रॉफेट जोसेफ स्मिथ की ब्रिगम यंग के लिए राय हम सब के लिए लागू है जो इस संदेश को सुनता है। मैं पिता और उनके बेटे की जीती सत्यता का बयान देता हूं। मैं बताता हूं कि पवित्र आत्मा एक दिलासा देने वाले शिक्षक है जिससे हमें सीखना है, और मैं बयान देता हूं कि आत्मा की भेंट यीशु मसीह के जीते गिरजे में काम करती है इन अंतिम दिनों में। मैं ऐसा बयान देता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।
I would like to speak today to
मेरा संदेश युवाओं के माता पिताओं की ओर है। तुम्हारे चमकते बलवान युवक गिरजे का भविष्य है, इसलिए वो शैतान के प्रमुख निशान हैं। तुम में से कई माता पिता इस महत्वपूर्ण आयु में उनकी मार्गदर्शन में सहायता के लिए प्रार्थना कर रहे हो। मेरे सबसे बड़े पोते हाल ही में किशोरी बने हैं, इसलिए ये विषय मेरे दिल को न्यारा है। ना ही कोई सिद्ध माता पिता है, ना ही कोई आसान जवाब, पर सच्चाई के कुछ तत्व हैं जिनका हम आधार ले सकते हैं। युवा पुरुष और स्त्रियों का इस साल की धुन यहाशु की किताब से ली गई है। शुरुआत में बलवान और धैर्यवान बनो, डरो नहीं। धर्मग्रंथों का ये वाक्यांश माता को पिता को भी लागू है। इन आखिरी दिनों में धैर्यवान माता पिता की जरूरत है, जो बोलने में कतराते नहीं, अपने दृष्टिकोण पर अटल। सोचो तुम्हारी बेटी रेल की पटरी पर बैठी है और तुम रेलगाड़ी की सीटी सुनते हो। क्या तुम उसे पटरी से उतरने सावधान नहीं करोगे? क्या तुम कतराओगे सोचते कि मैं अधिक शासन कर रहा हूँ? अगर उसने तुम्हारी चेतावनी न मानी तो क्या तुम उसे खुद नहीं उठाओगे? जरूर, तुम्हारा बेटी की ओर का प्यार इन सभी विचारों को ठुकराएगा। तुम्हें उसकी जान उसकी स्वतंत्रता से ज्यादा न्यारी होगी। चुनौतियां और लालच हमारे किशोरियों के पास रेलगाड़ी की गति से आ रहे हैं। हमें पारिवारिक घोषणा में याद दिलाया है, माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों की रक्षा है, मतलब दोनों शारीरिक और आत्मिक। मॉर्मन की किताब में हम जवान आलमा की उस के भटके बेटे कोरियंटन को दी सलाह के बारे में पढ़ते हैं। कोरियंटन ने कुछ गंभीर गलतियां की थी। आलमा का प्यार पर्याप्त था गलतियों के बारे में बिन हिचकते बात करने जितना। उसने अपनी गहरी निराशा व्यक्त की और पापों के गहरे परिणाम समझाए। मुझे आलमा के इन धैर्यवान शब्द पढ़ते प्रेरणा मिलती है। अब प्रभु की आत्मा मुझे कहती है, तुम्हारे बच्चे को भले कार्य करने की आज्ञा दो, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि अधर्म से बचो। आलमा ने समय पर दी सलाह की वजह से कोरियंटन ने अपनी राह बदली और बाद में वो उसने भक्तिपूर्वक सेवा की। आलमा के नमूने की तुलना पुराने नियम की इलाय से करो। इलाय इज़राइल में पैगंबर था। सैमुअल के समय वो उच्च पुरोहित था। धर्मगत बताते हैं कि प्रभु ने उसे बुरी तरह डांटा क्योंकि उसके बेटे नीच बने और उन्हें उसने नहीं रोका। इलाय के बेटे कभी नहीं पछताए और इज़राइल को उनके दुष्कर्मों का फल सहना पड़ा। इलाय की कहानी सिखाती है कि माता पिता जो बच्चों से प्यार करते हैं उनसे डरते नहीं। कई साल पहले सामान्य सम्मेलन में एल्डर क्रिश्चियनसन ने हमें याद दिलाया, प्रवेश या लोकप्रियता की स्पर्धा नहीं है। वैसे ही एल्डर हिल्स ने कहा है, कभी कभी हम बच्चों को सलाह देने से डरते हैं। कुछ साल पहले हमारा 17 साल का बेटा कुछ अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा पर जाना चाहता था। उसने अनुमति मांगी। किसी वजह से मैं उस यात्रा से बेचैन था। मेरी भावना मैंने पत्नी के साथ बांटी। मेरी पत्नी ने साथ दिया। उसने कहा, हमें चेतावनी की आवाज़ सुननी चाहिए। बेटे ने निराश होकर पूछा, आप क्यों मना कर रहे हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा तुम्हारी ओ प्यार मुझे वो ख्याल पड़े नहीं करने देता। मुझे अचरज हुआ जब उसने कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझा। जवान लोग हमारी अपेक्षा से ज़्यादा समझते हैं। उनके पास भी पवित्र आत्मा की देन है। वो हमारा नमूना देखते हुए उस आत्मा को परखना सीख रहे हैं। हमसे वो पवित्र आत्मा की सूचना सुनना सीखते हैं। जब संदेह होता है, पीछा छोड़ना ही बेहतर है। पति पत्नी को परवरिश के निर्णयों में एक होना जरूरी है। अगर किसी एक को ठीक नहीं लगता हो, अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को कोई फिल्म, दूरदर्शन का कार्यक्रम, वीडियो कम, गेम समूह, लिबास, इंटरनेट क्रिया अनुचित लगती हो, हमें एक दूसरे को साथ देने का साहस लेकर ना कहना चाहिए। मैं एक टूटे दिल माँ का खत बांटना चाहता हूँ। उसके किशोरी बेटे ने धीमी धीमी पवित्र आत्मा खोई और गिरजा से दूर हुआ। ये कैसे हुआ उसने समझाया। मेरे बेटे के किशोरी सालों में मैं परेशान थी। मैंने उसे हिंसात्मक वीडियो खेल खेलने से रोकना चाहा, पति से भी बात की, उसे इंजाइन के लेख दिखाए जहां इनके बारे में सावधान किया गया था, पर मेरे पिता को लगा कि वो ठीक है। उसने कहा वो नशा तो नहीं कर रहा, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने कभी कभी उसका रिमोट भी छुपाया, पर मेरे पति ने उसे वो लौटाया। झगड़ा करने से वो मानना आसान हो गया। मैं मानती हूँ कि वीडियो खेल भी नशीली दवाइयों जैसे ही लत है। मैं कुछ भी करने तैयार हूँ और माता पिता को इस अनुभव से बचाने। अगर तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी को किसी बात के बारे में संदेह हो, उस भावना को सम्मान दो। कुछ न कहने या करने से शायद विनाशी बर्ताव को बढ़ावा मिलेगा। माता पिता मनोव्यथा से बच सकते हैं बच्चों को सिखाने से कि रोमांटिक संबंध उस वक्त तक टालने चाहिए जब तक शादी की तैयारी न हो। तैयारी होने के पहले जोड़ा बनाना हानिकारक है। इससे भावात्मक संबंध निर्माण होते हैं जो शारीरिक संबंधों में बदल सकते हैं। शैतान ये अनुक्रम जानता है और फायदा लेता है। वो युवा पुरुषों को मिशन सेवा से रोकने की कोशिश करता है और मंदिर की शादी भी। माता पिता को बोलने का धैर्य पाना चाहिए। शैतान सफल होने के पहले प्रधान पैकर ने सिखाया, जब मृत्यु की बात है हमें अधिकार और कर्तव्य है चेतावनी की आवाज उठाने का। मैंने हमेशा माना है कि घोर रात में कोई अच्छी बात नहीं होती। युवाओं को बताना चाहिए रात किस वक्त लौटने की अपेक्षा है। रात बच्चों के लौटने के लिए जागने से माता पिता बहुत विवेक व्यक्त करते हैं। युवा पुरुष और स्त्रियां अच्छे निर्णय लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनके माता पिता उनके लिए शाम के बारे में बात करने जागे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत चेतावनी देना चाहता हूँ इस परंपरा के बारे में जिसमें युवा किसी दूसरे दोस्त के घर रात बिताते हैं। विशेष बिशप होते हुए मैंने जाना कि इन असरों पर कई युवाओं ने पहली बार विवेक का बोल या यौन शुद्धता का कायदा तोड़ा। कई को अश्लील साहित्य से परिचय हुआ या दोस्तों के साथ रात बिताते हुए पुलिस से संघर्ष हुआ। साथियों का दबाव हमारे बच्चों पर शक्तिशाली होता है जब वो हमारे प्रभाव से जुदा होते हैं या रात के वक्त थके होते हैं। अगर तुम कभी किसी रात की क्रिया के बारे में बेचैन हो तो वो चेतावनी मानने डरो नहीं। हमें प्रार्थना पूर्वक रहो बच्चों की सुरक्षा के बारे में। धैर्यवान पोषण में हमेशा ना नहीं करना पड़ता। माता पिता को आधुनिक पैगंबरों की सलाह को हाँ कहने का धैर्य चाहिए। गिरजे के नेताओं ने घर अच्छी परंपरा स्थापित करने प्रोत्साहन दिया है। सोचो इन 5 परंपराओं के बारे में हमारे युवाओं को जो शक्ति देंगी: पारिवारिक प्रार्थना, धर्मग्रंथ अभ्यास, संघ घर में शाम, एक साथ खाना, हर बच्चे के साथ अकेले चर्चा। बच्चों को उनके क्रियाओं से अलग करके साथ पारिवारिक प्रार्थना के लिए इकट्ठा करने धैर्य चाहिए। टीवी या कंप्यूटर से अलग करके धर्मग्रंथों के अभ्यास के लिए धैर्य चाहिए। सोमवार रात और आमंत्रण ठुकराने धैर्य चाहिए ताकि वो शाम परिवार के साथ बीती जाए। धैर्य और इच्छा की जरूरत है बाकी सभी क्रियाओं को परे करके साथ खाना खाने बैठने। बेटे या बेटी पर प्रभाव डालने का एक प्रभावशाली तरीका है उनसे अकेले में बात करना। ध्यान से सुनने पर हम उनके दिल की इच्छा जान पाएंगे, नैतिक लक्ष्य बिठा पाएंगे और अपने आध्यात्मिक प्रेरणा बांट पाएंगे। सलाह देने धैर्य की जरूरत है। सोचो उभरती पीढ़ी कैसी होगी अगर हम ये 5 परंपराएं हमारे घर में निरंतर पालेंगे। हमारे युवा हिलामन की सेना के जैसे बनेंगे, अजीत। किशोरियों का पालन इन आखिरी दिनों में सौंपा गया एक विनीत कार्य है। शैतान उनके आत्मिक विनाश में जुटा है। उन्हें पालने और उठाने प्रभु धैर्यवान माता पिताओं पर निर्भर है। धैर्यवान और शक्तिशाली बनो, डरो नहीं। मैं जानता हूँ ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मैं बयान देता हूँ प्रभु प्रार्थना सुनता है वो साथ देगा और आशीर्वाद भी देगा हमें धैर्यवान माता पिता बनने में। इस मसीह के नाम से आमीन।
Thank you, brethren.
धन्यवाद भाई। क्वायर और सभा आप गाएंगे I am a child of God। गाने के बाद 70 के एल्डर भी पर जी जायरो मजागार्दी एंड मर्विन बियानल जो 70 के हैं वो हमसे बात करेंगे। एल्डर लॉलोन के बाद में हम एल्डर एल्म रसल बैलर्ड से सुनेंगे जो कोरम द 12 अपोसल के हैं।
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I am a child of God.
मैं भगवान का बच्चा हूँ। इसको हमें याद रखना चाहिए। गोथेनबर्ग स्वीडन के शहर में एक चौड़ी सड़क है जिसके दोनों तरफ सुंदर पेड़ हैं। एक दिन मैंने एक बड़ा पेड़ के तने में एक छेद देखा तो मैंने उत्सुकता से उसके अंदर झांका और देखा कि वो पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखला था। वो खोखला था लेकिन खाली नहीं था। वो हर तरह के कचरे से भरा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित था कि वो पेड़ अभी भी खड़ा हुआ था। तो मैंने ऊपर देखा कि एक चौड़ी स्टील की बेल्ट पेड़ के ऊपरी तने से बंधी हुई थी। اس بیلٹ سے کئی اسٹیل کی تاریں جڑی ہوئی تھیں جو آس پاس کی بلڈنگز سے لگی ہوئی تھیں۔ دور سے وہ پیڑ باقی پیڑوں کی طرح دکھتا تھا، لیکن کیول اندر سے دیکھنے پر کوئی جان سکتا تھا کہ اس پیڑ کا تنا ٹھوس اور مضبوط ہونے کے بجائے کھوکھلا تھا۔ کئی سال پہلے کسی وجہ سے پیڑ کا تنا کمزور ہونے لگا تھا، کچھ یہاں اور کچھ وہاں۔ یہ رات بھر میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس طرح ایک چھوٹا پودا دھیرے دھیرے اگتا ہے، ایک مضبوط پیڑ بنتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی دھیرے دھیرے اپنی قابلیت میں بڑھ سکتے ہیں اور اس کھوکھلے پیڑ کے بجائے اندر سے مضبوط بن سکتے ہیں۔ عیسیٰ مسیح کے اٹونمنٹ کے دوارا ہم کھڑے ہونے کی طاقت ملتی ہے اور ہمارے اندر روشنی، سمجھ، خوشی اور پیار بڑھتا ہے۔ ان کا نیوتا ہے کہ سبھی ان کے پاس آئیں اور ان کی اچھائی میں حصہ لیں، اور وہ کسی کو بھی منع نہیں کرتے جو ان کے پاس آتا ہے۔ ان کا وعدہ ہے کہ میرے پاس آؤ سبھی جو محنت کر کے بھوجت ہیں، اور میں انہیں آرام دوں گا۔ میرے بارے میں سیکھو، کیونکہ میں دل سے نمر ہوں، اور تمہاری آتما کو شانتی ملے گی۔ اس شانتی کے بارے میں جوزف ایف سمتھ نے کہا ہے، میرے من میں اس کا ارتھ ہے بھگوان کے گیان اور پیار میں پرویش کرنا، ان کے ادیشے اور یوجنا میں اتنا وشواس کرنا کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم صحیح ہیں اور کہ ہم کسی اور چیز کی کھوج نہیں کر رہے ہوں۔ ہم سدھانت کی ہر ہوا سے پریشان نہ ہوں یا منشیہ کی چترتا سے جو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سدھانت بھگوان سے ہے، اور ہم اوروں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی رائے اور وچار دے سکتے ہیں۔ جو ویکتی بھگوان میں اتنا وشواس رکھتا ہے کہ اسے کوئی ڈر یا سندیہ نہیں ہے، وہ بھگوان کی شانتی میں پرویش کر چکا ہے۔ ہماری آتما کو شانتی ملنے میں شامل ہے من اور دل کی شانتی، جو مسیح کے سدھانتوں کو سیکھنے اور پالن کرنے سے ملتی ہے، اور دوسروں کی مدد کرنے سے، مسیح کے کھلے ہاتھ بننے سے ملتی ہے۔ عیسیٰ مسیح میں وشواس کرنے اور ان کی سیکھوں کا پالن کرنے سے ہماری آشا درڑ بنتی ہے، اور اس آشا سے ہماری آتما کو پکا سہارا ملتا ہے۔ ہم مضبوط اور سیر بن سکتے ہیں۔ ہمیں سائی آتمک شانتی مل سکتی ہے۔ ہم پربھو کی شانتی میں پرویش کر سکتے ہیں یدی ہم روشنی اور سچائی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ کیول تبھی ہم کھوکھلے پن کا آبھاس اس پیڑ کی طرح اپنی آتما کے سب سے اندرونی بھاگ میں ہوتا ہے، اور ہم اسے ان چیزوں سے بھر سکتے ہیں جن کا کوئی سائی مول نہ ہو۔ اس دھرتی پر آنے کے پہلے ہمارا آتمک بچوں کے روپ میں جیون، اور پھر اس دنیا کے بعد انت جیون کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ جیون کیول ایک چھوٹا پل کا ہے۔ یہ ہمیں پرکھنے کا دن ہے، لیکن ساتھ میں افسروں کا دن بھی ہے جب ہمیں اپنا سمے ویرت نہیں کرنا چاہیے۔ جن خیالوں کو ہم اپنے من میں رکھتے ہیں، جن بھاوناؤں کو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور جو کام کرنے کا ہم نرنے لیتے ہیں، ان سبھی کا ہمارے جیون پر آنے اس سمے اور آنے والے جیون پہ گہرا پربھاؤ پڑے گا۔ ایک اپیوگی عادت یہ ہے کہ ہم ہر دن اپنی نظر اٹھائیں تاکہ ہم ایک انت جیون کی سوچ رکھتے ہوئے اپنے نرنے لیں۔ اکثر یدی ہمیں आने वाले कल पर काम छोड़ने की प्रवृत्ति है, तो हम जानते हैं कि हमें आज के दिन में ये काम करने चाहिए। इस जीवन में हमें स्पिरिट के प्रभाव से अपनी निर्णय बनाने में मदद मिलती है। अब यदि हम अपनी रोशनी और समझ के खिलाफ निर्णय लें, तो ये हमें इस स्थिर विवेक का आभास होगा जो अच्छा नहीं महसूस होता। लेकिन इससे हमें याद आता है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए और हमें अपना को बदलना चाहिए। जो अभिमानी हैं और जो खुद अपना कानून बनना चाहते हैं, वे सैतान को अनुमति देते हैं कि वो उनके गले को रस्सी से बांधकर उन्हें हमेशा के लिए अपने मजबूत रस्सियों से बांध ले, जब ताकि उनके दिलों में पश्चाताप की भावना आए। गलत प्रभावों का पालन करने से शांति कभी नहीं मिलती, क्योंकि शांति भगवान से आती है। गलत करना कभी भी खुशी नहीं था। हमारी रोज की जिंदगी में अक्सर छोटी और साधारण चीजें होती हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक होता है। हम क्या कहते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे प्रवृत्ति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसका प्रभाव हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता था। हमें उन उठा सकते हैं या नीचे दिखा सकते हैं। मेरी दादी जी के बारे में एक कहानी है जो एक साधारण उदाहरण है। उन्होंने अपने एक बच्चे को अंडे लाने के लिए भेजा। घर लौटने पर उस बच्चे ने हंसते खुलते अंडे घर लौटने पर अंडे टूट गए। घर के परिवार के एक दोस्त ने दादी जी से कहा बच्चे को डांटने के लिए, लेकिन दादी जी ने कहा नहीं, उससे अंडे जुड़ नहीं जाएंगे। उनने कहा कि जो बचा है उससे हम पैनकेक्स बनाएंगे और उनका आनंद उठाएंगे। इससे हम लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। जो भी चीजें हमें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, मसीह की शक्ति और तोहफे से भेजा हुआ होता है। हम जान सकते हैं कि यह भगवान से है। अब जिस खोखले पेड़ के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो खड़ा नहीं है। कुछ युवाओं ने उसमें पटाखे डाल दिए थे जिससे वो उस पर आग लग गई थी। उसे बचाया नहीं जा सका। उन चीजों से सावधान रहिए जो अंदर से नष्ट करती हैं, चाहे वे छोटी या बड़ी हों। उनसे विनाश करने की प्रभाव और आत्मिक मृत्यु हो सकती है, बल्कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें लंबे समय तक शांति मिलती है। तब हमारा विश्वास भगवान की उपस्थिति में पक्का होगा। प्रभु की शांति में प्रवेश करना, शांति के तोहफे को पाना अस्थाई संसारिक सुख से कहीं दूर है। वो वास्तव में एक स्वर्गीय तोहफा है। मैं अपनी शांति तुम्हें साथ छोड़ता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, मैं तुम्हें देता हूँ। अपने दिल को अशांत मत होने दो, उसे डरने मत दो। वे हमारी आत्मा को स्वस्थ, मैं जीसस क्राइस्ट की गवाही देता हूँ उनके नाम में, आमेन।
एक सुंदर सुबह मैंने अपनी 8 साल की पोती विकी के को झील के किनारे चलने के लिए बुलाया, जो झील हमारे शहर को पानी देती है। हम खुशी से चले। पानी को छराने की प्यारी आवाज को सुनते उस रास्ते पर सुंदर झाड़ और सुगंधी फूल थे। हम चिड़ियों को भी सुन सकते थे। मैंने अपने खुश और प्यारी पोती से पूछा कि वो बपतिस्मा के लिए कैसे तैयारी कर रही थी। मेरे प्रश्न को उसने प्रश्न से उत्तर दिया, ग्रैंपा, दादाजी पाप क्या है? मेरे प्राण की प्रेरणा के लिए प्रार्थना की और सरल जवाब देने की कोशिश की पाप परमेश्वर के नियमों के जानबूझ के आज्ञा पालन नहीं करना है। उसे भगवान दुखी होता है और उसकी वजह से तकलीफ आती है। उसने चिंतित होकर पूछा, वो हम कैसे ढूंढता है? उसके प्रश्न निर्मलता जताता है, पर वो पाप से बचने का तरीका को भी दर्शाता है। उसको समझाने के लिए मैंने आसपास की प्रकृति को उपयोग किया। हमारे रास्ते पर हमने एक पत्थर का एक स्तंभ देखा जिसके ऊपर फूल और झाड़ उग रहे थे, और आने वाले समय में वो स्तंभ से बड़े हो जाएंगे। मुझे याद आया कि रास्ते पर आगे एक ऐसा और स्तंभ है जिसे झाड़ियों ने ढक दिया था। मुझे लगा कि उस पत्थर के स्तंभ को कभी लगा नहीं होगा कि वो झाड़िया से ढक जाएगा। उसने कभी भी सोचा नहीं होगा कि मैं बड़ा और शक्तिशाली हूँ, मुझे ये छोटा फेरा नुकसान नहीं देगा। तो जैसे झाड़ फैलता है, स्तंभ उसकी छाया को आनंद उठता है, पर जैसे झाड़ और फैलता है, उसकी डाले जो पहले पतली थी अब स्तंभ को ढक देती है। फिर भी स्तंभ की को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। हमारे शहर में हमने एक स्तंभ को देखा जिसे जमीन में उखाड़ दिया गया था। मेरी पुत्र ने मुझसे पूछा कि क्या वो पाप का पेड़ था। मैंने उस समझाया कि वो सिर्फ एक चिन्ह था पाप की पकड़ को बताने के लिए। मुझे पता नहीं है कि हमारी वार्तालाप का उस पर क्या असर होगा, पर उसने मेरे दिमाग को पाप के रूपों और उसके हमारे जीवन में आने के तरीका को के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हमें छोटे निर्णय पर ध्यान देना है क्योंकि उनकी वजह से बड़ी नतीजे हो सकते हैं। जैसे जल्दी से सोकर जल्दी उठाना, डॉक्ट्रिन कवेनेंट 88:124 ने सिखाते हैं, जल्दी उठो ताकि तुम्हारे शरीर और दिमाग स्फूर्ति पाए। जो जल्दी सोते हैं वो भगवान के द्वारा आशीर्वादित स्फूर्ति भरे शरीर और दिमाग से उठते हैं। जो कम जरूरी चीज लगते हैं, जैसे देर से सोना, एक दिन प्रार्थना नहीं करना, उपवास नहीं करना या सैबत को नहीं रखना, और धीरे धीरे हम बड़ी गलतियों के करने पर मजबूर कर देगी। जब मैं एक टीनेजर था, मेरा कर्फ्यू 10 बजे था। आज वो बाहर जाने का समय है जबकि हमें पता है कि रात में सबसे खराब चीज होती है। रात के समय में हमारे जवान उन्हीं जगहों पर जाते हैं जहां संगीत उन्हें पवित्र आत्मा को साथ रखने नहीं देता है। फिर इन में वो पाप को शिकार बन जाते हैं। पाप के शिकार बनने की शुरुआत उन दोस्तों से होती है जिनका जीवन गॉस्पेल के अनुसार नहीं है, पर दोस्ती के लिए हमारे जवान गॉस्पेल को नियम को छोड़ उस रास्ते पर जाते हैं जिससे सिर्फ दुख आता है। हमें सतर्क रहना है पाप के हमारे आसपास बढ़ने से। उसके रूप कंप्यूटर और सेलफोन में है। इनसे हमारे जीवन को लाभ मिलता है, पर उनके दुरुपयोग जैसे गेम और पोर्नोग्राफी हानिकारक है जो नास्तिक मजाक के तरफ ले जाती है। पोर्नोग्राफी चरित्र को तोड़ एक व्यक्ति को उस गंदे कुएं में फेंकती है जिससे वो काफी मदद से भी बाहर निकल सकती है। इससे व्यक्ति और उसके परिवार, बच्चों, पत्नी, पति माँ बाप को दुख होता है, नास्तिक अनंत को नास्तिक आनंद को फल दुख है, और आज्ञाकारिता के फल अनंत के शांति है। स्तरों के पहलों से निर्णित करना है, प्रलोभन के आने बात नहीं, हमारे स्तर होने चाहिए। मैं ये करूँगा क्योंकि ये भगवान से आता है और इससे मुझे खुशी मिलती है। ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे सत्य भगवान और अनंत खुशी से दूर ले जाती है। वो आके पालन करने का बाधा करता है क्योंकि पिता को पता है कि हम गलती करेंगे। उन्होंने प्रेम भरे प्लान से दुनिया को एक मसीहा दिया है जो पश्चाताप करने वालों को पापों को धोता है, जो उसे मदद के लिए ढूंढते हैं, और जो उसका नाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, यीशु मसीहा। अगर हम पाप करें, हम तुरंत मदद ढूंढनी है, क्योंकि अकेले हम पाप से नहीं बच सकते हैं। जैसे वो स्तंभ अपने आप को छुड़ा नहीं सकता है, हमें पाप को की पकड़ को तोड़ने के लिए किसी की मदद चाहिए। माँ बाप की मदद कर सकते हैं और बिशप को भगवान की मदद के लिए भी भेजा है। हमें उसके सामने अपने दिलों के खोलना है। डॉक्टर कविनेट समझाता है, जिसने अपने पाप का पश्चाताप किया उसको पापों को माफ कर में भगवान उन्हें याद नहीं रखता है। अगर किसी के पश्चाताप करना है तो उसके अपने पाप को स्वीकार कर उसे छोड़ना है। मेरी पोती ने हमारी शेर के कुछ महीने के बाद बिशप अपने पिता से इंटरव्यू कर बपतिस्मा की बात की। मैंने पूछा कि वो कैसे गया। उसने मुझे दांत थे कहा, दादाजी इंटरव्यू संवेदनशील है, आपको पता है। बिशप, आप इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेगो। मुझे लगता है कि मेरी पोती छोटे समय में बहुत बढ़ गई। जैसे मैंने उस झाड़ के बारे में कहा जो दुख लाती है, एक दूसरा झाड़ उसका विपरीत असर लाता है। जैसे पहले निफाई 8:10-12 में लिखा है, ऐसा हुआ कि मेरा पास एक झाड़ आया जिसके फल खुशी देने वाला था, और फिर मैंने उसका फल खाया और वो किसी भी फल से ज्यादा मीठा था। वो फल सफेद था, मेरी किसी भी देखी सफेद से ज्यादा। और जैसे मैंने उस फल को खाया तो मेरी आत्मा को बहुत खुशी हुई। प्रिय बहनों और भाइयों, शक्ति से उन निर्णय को करो जिससे तुम जीवन के झाड़ के फल को खा सको। अगर तुमने रास्ता खोया है, हमारा हाथ तुम्हारी और मदद के लिए बढ़ा है, और हम कहते हैं कि जीवन में आशा है, और हम तुम प्यार करते हैं और तुम खुश देखना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें उनका अकेला बेटा यीशु मसीह दिया है। यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे पाप को धोने के लिए अपने जीवन को कुर्बानी किया है। हम साफ रहने के लिए क्या करने को तैयारी है ताकि हम वो खुशी मिले। मैं विदा करता हूँ यीशु मसीह को पवित्र नाम में मेरे बयान के साथ। आमीन।
जब प्रेसिडेंट जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ जवान थे, उनके मृत दादा जॉर्ज ए स्मिथ उनके सपने में आए और पूछा, तुमने मेरा नाम के साथ क्या किया है? प्रेसिडेंट स्मिथ ने जवाब दिया, मैंने आपके नाम के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका शर्मिंदा होगी। हर हफ्ते जैसे हम सैक्रमेंट लेते हैं, हम वादा करते हैं कि हम मसीह की नाम अपने पर लेंगे और उनको हमेशा याद रखेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। अगर हम वैसा करें तो हमें वादा किया जाता है कि उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद उनकी आत्मा हमारे साथ रहेगी। जैसे प्रेसिडेंट जॉर्ज अल्बर्ट स्मिथ को अपने दादा को जवाब देना पड़ा है कि उन्होंने उनके नाम के साथ क्या किया है, किसी दिन हम भी ایسے ہم مسیح کے حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے ان کے نام کے ساتھ کیا کیا ہے. پروربز میں ہم پڑھتے ہیں, ایک اچھے نام کو بڑی امیری کے بجائے چننا ہے اور صحیح کرنے والے کا نام آشیرودت ہے. جیسے میں نے اس اچھے نام کے مہتو کے اسکرپچر کے بارے میں سوچا, میں نے میرے دماغ میں وہ یاد آئی جو اچھے نام کی دھروہر میرے ماں باپ نے میرے چار بھائیوں اور بہنوں اور میرے لیے چھوڑی. نو بچے, دو بیڈ روم, ایک باتھ روم میں پڑے ہوئے. جب میرے ماں باپ چل بسے, ہم بھائی بہنوں نے ان کی سمپتی کو بانٹنے کی بات شروع کی. ان کی سمپتی بہت کم تھی. میرے ماں نے کچھ ڈریس, کچھ فرنیچر چھوڑا. میرے پتا نے کچھ اوزار, کچھ شکار کی بندوق چھوڑی. وپتی لائق صرف ایک گھر اور ایک چھوٹا سیونگز اکاؤنٹ تھا. ہم روتے ہوئے آبھار دیے کہ انہوں نے ہمارے لیے سمپتی سے زیادہ انمول کچھ چھوڑا. انہوں نے ہمیں ان کا پیار اور سمے دیا. انہوں نے گاسپل کی ستیتا کے بارے میں بیان کئی بار دیے تھے جنہیں ہم ان کے جرنلوں میں پڑھ سکتے تھے. شبد سے زیادہ انہوں نے مثال سے سکھایا. محنت اور ایمانداری کے انہوں نے ہمارے دل میں پڑھائی. مشن کرنے کی اچھا کو اتپن کیا. اور سب سے زیادہ مہتوپورن ایک انت ساتھی کے ڈھونڈ کر ٹیمپل میں شادی کر کے انت تک کوشش کرنے کے لیے نشچے کیا. انہوں نے ہمیں ایک اچھے نام کی دھروہر چھوڑی جس کے لیے ہم ہمیشہ آباری ہوں گے. جب پرافٹ ہیلمن اور ان کی پتنی کو دو بالکوں کا آشیرواد ملا, انہوں نے انہیں لیہی اور نیفائی کا نام دیا. ہیلمن نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ انہیں دو پورواجوں کو ناموں کے اوپر نام دیا گیا تھا جو اس دھرتی پر 6 سال کے پہلے پیدا ہوئے تھے. اپنے نام کو یاد کرو, تم ان کے کاموں کو یاد رکھو, اور یہ یاد رکھو کہ وہ کام اچھے تھے. اس لیے میرے لڑکوں, تم وہ کرو جو اچھا ہے, تاکہ تمہارے بارے میں ویسا کہا اور لکھا جائے جیسے ان کے بارے میں لکھا گیا تھا, تاکہ تم انت جیون کے اپہار کو پاؤ. بھائیوں اور بہنوں, 6 سال میں ہمارے ناموں کو کیسے یاد کیا جائے گا؟ مورونائی نے مسیح کے نام کو لے اپنے نام کو اچھا رکھنے کے بارے میں کہا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مسیح کے پاس جاؤ اور ہر اچھے اپہار کو پکڑو پر پاپ کو مت چھوو. مسیح کے پاس آؤ, ان میں سے نردوشتا پاؤ اور ہر طرح کی برائی کو چھوڑو. For the strength of the youth کی پریرت پستک میں ہم پڑھتے ہیں, چناؤ کرنے کی سوتنترتا بھگوان سے آتی ہے. وہ انت نیم جس کے ساتھ میں چناؤ کری چیزوں کی نیتک ذمہ داریاں جڑی ہے. ہم سوتنترتا سے چن سکتے ہیں, پر انیک پھلوں کو ہم نہیں چن سکتے ہیں. ان کے پھلوں کو ہم چن نہیں سکتے ہیں. میری پریا پتنی ڈیوونا اور میری شادی کے بعد اس نے مجھے اس مہتوپورن نیم کو سمجھایا کہ ایک ہم سوتنترتا سے چننے سکتے ہیں, پر ہم اس کے پھلوں کو نہیں چن سکتے ہیں. میری بیٹی شیلی کی مدد سے میں سسٹر آرنل کے انوبھو کو بتاؤں گا. جب میں 15 سال کا تھی, تب مجھے لگتا تھا کہ کافی نیم ہیں. مجھے لگا کہ میرے جیسا مستی کرنے والی ویکتی کے لیے اتنے نیم جیون کا مزہ نہیں لینے دیں گے, اور میرے پتا کے کھیت پر گھنٹوں کام کرنے سے میں اپنے دوستوں سے دور تھی. اس گرمی کے سمے میں میرا کام تھا کہ میں گائیوں کو بانٹ توڑ گھینو کے کھیت میں نہیں جانے دے. ایک گائے جب گھینو کھاتی ہے تو وہ مر سکتی ہے۔ ایک گائے باڑ سے اپنے سر کو دوسرے کھیت میں ڈال رہی تھی۔ ایک صبح جیسے میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، گائے پر نگاہ رکھتی میں نے جب اسے پایا تھا وہ کافی کھا چکی تھی اور پیٹ بلون کی طرح پھیل رہا تھا۔ میں نے سوچا، بیوقوف گائے، وہ باڑ تمہاری رکشا کے لیے تھا، پر تم نے اس توڑ کر اتنا کھایا کہ تمہاری جیون خطرے میں ہے۔ پر ہم واپس آئے تو وہ زمین پر باری پڑی تھی۔ مجھے اس کی مرتیو سے دکھ ہوا۔ ہم نے اسے ایک کھیت چرنے کے لیے دیا تھا تاکہ وہ خطرناک گھینوں سے دور رہ، پر وہ بیوقوفی سے باڑ توڑ لی اور اپنے پران کھو دیے۔ وہ میری آچے کے لیے تھے۔ میں نے جانا کہ نیموں کے آگیا پالن سے میں ہی آتمک اور شریرک مرتیو سے بچ سکتی ہوں۔ وہ گیان میرے جیون میں ایک اہم گھٹنا تھی۔ سسٹر آرنل نے سیکھا کہ ہمارے پیار اور سمجھدار سورگیہ پتا نے ہمیں نیم دیا ہے تاکہ وہ ہماری سوتنترتا کو نہیں چھینے، چاہے شیطان کیا کہہ چاہے، پر تاکہ ہمارے جیونوں کی آشیرواد ملے اور ہمارا اچھا نام اور آنے والے سمے کی دورہ کا رکشن ہو۔ جیسے وہ گائے جسے اس کے کرموں کا پھل ملا، ہم سب کا سکھانا ہے کہ گھاس باڑ کی دوسری اور زیادہ ہری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو ہر جیون کے چناؤ کے پھل ملیں گے۔ جب یہ جیون ختم ہوگا، بھگوان کے آدیش صاف ہے، وہ رکشا کرتا ہے اور آدیش پالن کے آشیرواد ان کے ہیں۔ ہمارے سورگیہ پتا جانتے تھے کہ ہم سب غلطیاں کریں گے۔ میں مسیح کے بلیدان کے لیے آباری ہوں جو ہم سب کو پشچاتاپ کرنا دیتا ہے تاکہ ہم غلطی صحیح کر کے تاکہ ہم مسیح کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے بھگوان اور مسیح ہمیں ہر دن نمنترن دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے ناموں کو صاف رکھ کر ان کی سنگت میں جائیں۔ ان کے ان شبدوں کو سنتے ہو، کیوں تم مجھے میرے واپس نہیں لوٹو گے اور اپنے پاپوں کا پشچاتاپ کرے پریورتن پا کر تاکہ میں تمہیں ٹھیک کروں۔ کسی کاریہ کرنے کے پہلے کلپنا کرو کہ مسیح آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سوچو کہ کیا تم ایسا کرو گے اگر تم جانتے ہو کہ وہ یہاں ہے۔ وہ واہن ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے پریزیڈنٹ مانسن، جن کا میں بیان دیتا ہوں کہ وہ پروفیٹ ہیں، مسیح کے بارے میں بولتے سمے اس سکرپچر کو استعمال کرتے ہیں۔ میں تمہارے آگے جاؤں گا، میں تمہارے سیدھا اور الٹا ہاتھ ہوں گا، اور میری آتما تمہارے دلوں میں ہوگا۔ اس بہترین دن جب ہم ہمارے پیارے مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب دینے کے لیے کہ ہم نے ان کے نام کے ساتھ کیا کیا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں، میں نے ایک اچھی لڑائی لگی ہے، میں نے وشواس رکھا ہے اور میرا کاریہ پورا کیا ہے۔ بلیدان سچا ہے، ہمیں صاف کیا جا سکتا ہے، یشو مسیح ہے، اور انہوں نے اپنے پران دیے تاکہ ہم جی سکے۔ یشو مسیح کے نام میں آمین۔
Brothers and sisters,
بھائیو اور بہنوں، یہاں کے راکی پہاڑوں میں پتجھڑ کی ریتو اپنے ساتھ لاتی ہے پتیوں کے بدلتے ہوئے سندر رنگ، ہرے سے چمکدار رنگی، لال اور پیلا۔ اس ریتو کے دوران پرکرت میں بدلاؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھنڈ کے سندر موسم کے لیے پتجھڑ کا موسم مچھواروں کے لیے خاص طور سے مزیدار ہوتا ہے۔ کیونکہ ٹراؤٹ مچھلی اپنے بھوک مٹانے کے لیے اتسک ہوتی ہے تاکہ اس کے شریر سردی کے موسم میں کھانے کی خامی کے لیے مضبوط بنے. مچھواروں کا لکشیہ مچھلی کو دھوکہ دے کر پکڑنا ہوتا ہے. ان نپن مچھواروں مچھلی کو موسم کو پانی کے بہاؤ کو مچھلی جو کیڑے کھاتی ہے اس سبھی کے بارے میں سیکھتا ہے. اکثر وہ مچھلی کو للچانے والی چیز کو خود ہاتھ سے بناتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ نقلی کیڑے جن میں چھوٹے چھوٹے کانٹے ہیں انہیں بالکل صحیح دکھنا چاہیے, نہیں تو مچھلی اس پر نہیں جھپٹے گی. کتنا رومانچک ہوتا ہے مچھلی کو پانی کے اوپر کود کر نقلی کیڑے پر جھپٹنا دیکھنا, پھر اس ویرودھ کرنا اور انت میں پھر کھینچ لیا جاتی ہیں. اس میں مچھوارے کا مچھلی کے ساتھ پرکھ ہوتا ہے. جس طرح مچھلی کو دیکھ کر پکڑنے کے لیے نقلی کیڑوں کا پریوگ کیا جاتا ہے, اسی طرح لوسیفر اکثر ہمیں دھوکہ دے کر لبھانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح مچھوارا جانتا ہے کہ مچھلی کی بھوک کی وجہ سے اسے لبھایا جا سکتا ہے, لوسیفر ہماری بھوک یا کمزوری جانتا ہے اور ہمیں نقلی لالچ دے کر لبھاتا ہے, اور یدی ہم اسے لے لیں تو وہ ہمیں جیون کی دھارا سے نکال لے گا. اس کا لکش جس طرح مچھوارا مچھلی کو واپس چھوڑ دیتا ہے, لوسیفر خود اپنے سے ہمیں نہیں چھوڑے گا. اس کا لکش ہے ہمیں اسی کی طرح دکھ میں رکھنا. لیہائی نے کہا, اور کیونکہ وہ لوسیفر سورگ سے گر گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے دکھی ہو گیا تھا, اس لیے وہ پوری مانوتا کا دکھ چاہتا ہے. آج میں اپنی آواز اپنے بھائیوں کی آواز کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ لوسیفر چالاک اور چتر ہے. ہمیں لبھانے کے لیے اس کی مکھیہ ودھی ہوتی ہے ہمیں دھوکہ دے کر راضی کرانا کہ غلط صحیح ہے اور صحیح غلط. شروعات سے سورگ کی مہان سمیتی میں سیٹن چاہتا تھا منشیہ کی اچھا نشٹ کرنا جو میں نے پربھو نے اسے دیا ہے, اور وہ سیٹن بن گیا. شیطان سبھی جھوٹوں کے پتا, منشیہ کو دھوکہ دینا اور اندھا کرنا اور انہیں اپنی اچھا کا بندی بنانا. منشیہ کو بھگوان دوارا دی گئی اچھا سمبندی یدھ آج بھی چل رہا ہے. سیٹن اور اس کے ساتھیوں لالچ ہمارے سبھی اور ہیں تاکہ وہ ہمیں کھینچ لے. وہ اچھا کو لینے کے لیے ویسن کا پریوگ کرتا ہے. ڈکشنری کے مطابق ویسن کا ارتھ ہے کسی چیز سے ہار ماننا, یعنی اس سے بندھی بننا. کسی جیون نشٹ کرنے والے پدارتھ یا آچرن پر نربھر ہونا. ویگیانک بتاتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ایک جگہ ہے جسے آنند کیندر کہتے ہیں. جب وہ کسی پدارتھ یا ویوہار سے چالو ہو جاتا ہے تب اس کی شکتی ہمارے دماغ کے اس بھاگ جو ہماری اچھا سوچ سداچار کے لیے ہے اس سے ادھک شکتیشالی ہو جاتی ہے. اس سے ویسن کرنے والا جو نہیں کرتا جو وہ جانتا ہے کہ صحیح ہے, اور جب یہ ہوتا ہے تب وہ کانٹے میں پھنس چکا ہے اور لوسیفر کے قابو میں ہے. سیٹن ہماری استھائی آنند دینے والی نقلی پدارتھوں اور ویوہاروں سے لبھانا جانتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی قابو واپس پانے کے لیے سنگھرش کرتا ہے نشٹ کرنے والے ویسنوں سے مکت ہونے کے لیے اور آتم سمان واپس پانے کے لیے, کچھ پدارتھ جو سب سے ادھک ویسن چالو کروانے والے ہو سکتے ہیں, نیکوٹین, اوپیوئڈز, ہیروئن, مورفین اور دوسرے درد نوارک, کوکین, شراب, میروانا اور میتھامفیٹامینز. मैं उन डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्हें दर्द और पीड़ा के निवारण के लिए सही दवा देना सिखाया गया है। दुर्भाग्य से आज के समाज में कई लोग, जिनमें हमारे कुछ मेंबर्स भी हैं, इन दवाइयों के दुरुपयोग से व्यसन में पड़ जाते हैं। लूसिफर ये जानता है और अपने प्रभाव से हमें बंदी बना लेता है। हाल में मैंने एक महिला से बात की जो एक अस्पताल के मानसिक रोग वाले भाग में थी। उन्होंने अपनी स्वस्थ मानसिक और शारीरिक अवस्था, अच्छी शादी और परिवार से मानसिक और शारीरिक रोग, बिखरे परिवार की दुख भरी यात्रा सुनाई जो चालू हुई थी एक दर्द निवारक दवा के दुरुपयोग से। हमारी बातचीत के 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी पीठ को चोट लग गई थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें असहनीय दर्द से आराम पाने के लिए दवा दी। उन्हें लगा कि उन्हें और ज़्यादा चाहिए था, तो वे गलत तरह से दवा लेने लगीं और अंत में हेरोइन खरीदने लगीं। इससे उनका अरेस्ट हुआ। उनके व्यसन के कारण उनके पति ने उन्हें डिवोर्स दिया और बच्चों को अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे बताया कि दर्द कम करने के साथ उन पदार्थों से उन्हें छोटे समय के लिए अधिक उत्साह का अनुभव होता था, लेकिन वो कुछ ही घंटों के लिए रहता था तो वे और लेने लगीं और व्यसन में पड़ गईं। ये उनकी ज़िंदगी बन गई। जिस दिन मैंने उनसे बात की, उसकी पिछली रात उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा वे और ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दर्द नहीं सह सकती थीं। उन्हें लगा कि वे फंस गई थीं और अब बाहर नहीं निकलने का कोई रास्ता था, कोई आशा नहीं थी। इस महिला की दवाइयों के साथ की समस्या इकलौती नहीं है, ये सभी जगह हो रहा है। कुछ जगह लोगों की मृत्यु की संख्या दवाइयों के व्यसन से ज़्यादा और वाहन दुर्घटना से कम होती है। भाइयों और बहनों, हर पदार्थ से दूर रहिए जो आपको बंदी बना सकता है। किसी पदार्थ को एक बार सूंघना या एक गोली खाना या एक बार शराब पीने से आप व्यसन में पड़ सकते हैं। एक शराबी जो ठीक हो रहा था ने मुझसे ये बताया कि केवल एक बार पीने का अंतर होता है जो व्यसन कर रहे होते हैं और जो नहीं। सेटन ये जानता है। उसके नकली लालच में मत पड़िए जो जल्दी व्यसन बन सकता है। अब भाइयों और बहनों, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को गलत नहीं कह रहा हूँ। उनके लिए जो रोगी हैं और जिनका अधिक शारीरिक दर्द है, ये एक आशीर्वाद है। जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि हमें डॉक्टर की द्वारा दी गई दवाइयों को बड़े ध्यान से लेना चाहिए और हमें उन दवाइयों को एक सुरक्षित जगह रखना चाहिए जहाँ बच्चे और कोई और उन तक ना पहुँच सकें। साथ में व्यसन वाले व्यवहारों जैसे जुआ खेलना और पोर्नोग्राफी के बारे में भी चिंता है जो समाज में सभी जगह हैं। याद रखिएगा भाइयों और बहनों कि हर तरह के व्यसन का अर्थ है किसी चीज़ पर निर्भर होना और अपनी इच्छा खो देना। इसलिए वीडियो गेम खेलना और सेल फोन पर टेक्स्ट भेजना इन में शामिल है। कुछ वीडियो गेम खेलने वाले कहते हैं कि वे दिन में 18 घंटे खेलते हैं जिससे उनके जीवन के बाकी सभी काम छूट जाते हैं। सेल फोन पर टेक्स्टिंग के व्यसन बन सकता है जिससे दूसरों के साथ व्यक्तिगत रूप से बात बंद हो सकती है। ایک بار ایک بشپ نے مجھ سے بتایا کہ اس کے دو یووا ساتھ میں کھڑے ہو کر بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ بھیج رہے تھے۔ چکتسک ویسن کو دماغ کی بیماری بتاتے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ایک بار سیٹن کسی کو اپنے وش میں کر لے تو وہ ایک آتما کی بیماری بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ہر کوئی جو کسی ویسن میں پھنسا ہوا ہے وہاں آشا ہمیشہ ہے۔ پروفیٹ لیہائے نے اپنے بیٹوں کو یہ انت سچ سکھایا، منشیہ شاریرک روپ سے آزاد ہے اور سبھی چیزیں اسے دی گئی ہیں جو اس کی اچھائی کے لیے ہیں، اور وہ سوتنترتا اور انت جیون چننے کے لیے آزاد ہے پربھو دوارا، یا بندگی اور موت چننے کے لیے شیطان کی بندگی اور شکتی دوارا۔ یدی کوئی جو ویسن میں ہے جو آزادی چاہتا ہے تو آتمک سوتنترتا کے لیے راستہ ہے، بندگی سے نکلنے کے لیے ایک راستہ جو پرکھا ہوا ہے۔ یہ پرارتھنا کے ساتھ چالو ہوتا ہے، دل سے اتسک اور ستھر وارتالاپ ان کے ساتھ جنہوں نے ہماری آتما اور شریر کو بنایا ہے، ہمارے پرم پتا۔ کوئی عادت توڑنے یا پشچاتاپ کرنے کے لیے یہی سدھانت ہے، ہمارے دل، شریر، من اور آتما کا بدلاو کیسے کرنا ہے اسکرپچرز سے ملتا ہے۔ پروفیٹ مارمن نے ہمیں صلاح دی، میرے پیارے بھائیوں، پرم پتا کی سے دل کی پوری شکتی سے پرارتھنا کرو کہ تم ان کے پیار سے بھر جاؤ، تاکہ تم بھگوان کے بچے بنو، تاکہ ہم ان کی طرح شدھ بنیں۔ یہ اور کئی دوسرے اسکرپچرز ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ ویسن کرنے والوں کے لیے آشا ہے، اور یہ آشا عیسیٰ مسیح کے اٹونمنٹ اور بھگوان کے سامنے خود کو ونمر کرنے سے آتی ہے، ان سے بندگی سے مکتی پانے کے لیے نویدن کرنے اور پوری شکتی سے پرارتھنا کرنے سے آتی ہے۔ پریسٹوڈ کے نیتا ویسن کرنے والوں کو صلاح دے سکتے ہیں، جہاں ضرورت ہو وہاں وہ انہیں یوگیہ اور لائسنسڈ صلاح کاروں اور ایل ڈی ایس فیملی سروسز کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ ویسن سے مکتی پانے کے لیے کاریکرم ایل ڈی ایس فیملی سروسز دوارا آسانی سے اپلبدھ ہے۔ جو ویسن سے خود یا پھر اپنے پریوار میں جوجھ رہے ہیں، میں ان سے پھر سے کہتا ہوں، دل سے پرارتھنا سے آتمک شکتی مل سکتی ہے جس سے ویسن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پرم پتا اپنے سبھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں دھنیواد دو، ان میں دل سے اپنے وشواس ویکت کرو، ان سے ویسن پر قابو پانے کے لیے شکتی مانگو، اپنے ابھیمان کو کنارے کر کے اپنا جیون اور اپنا دل انہیں سونپ دو۔ مسیح کے شدھ پیار سے بھرنے کے لیے پرارتھنا کرو، تمہیں بھلے ہی یہ کئی بار کرنا پڑے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سے تمہارا شریر، من اور آتما شدھ کیے جا سکتے ہیں، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ عیسیٰ نے کہا، میں دنیا کی روشنی ہوں، جو میرا پالن کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ اسے جیون کی روشنی ملے گی۔ کیونکہ ہمارا لکشیہ پربھو کی طرح بننا ہے اور انت میں اپنے پرم پتا کے ساتھ رہنے کے یوگیہ بننا ہے، ہر کسی کو اپنے دلوں میں ایک مہان بدلاؤ انوبھو کرنا ہوگا جس کے بارے میں پروفیٹ ایلما نے بک آف مارمن میں بتایا تھا۔ ہمارے پرم پتا اور پربھو عیسیٰ مسیح کے لیے پیار ہمارے روز کے نرنے اور کاموں میں دکھنا چاہیے۔ انہوں نے شانتی، سکھ اور خوشی کا وعدہ کیا ہے جو ان کی آگیوں کا پالن کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سبھی لوسیفر کے نقلی لالچیں लालचों से सावधान रहें। हम सभी में बुद्धि और आत्मिक शक्ति हो ताकि हम धोखे में ना पड़ें। और जो कोई व्यसन के जाल में फंसा हुआ है, आशा हमेशा है, क्योंकि भगवान अपने सभी बच्चों से प्यार करते हैं और क्योंकि प्रभु के अटोनमेंट और प्यार से सभी चीजें मुमकिन हैं। मैंने व्यसन से आजाद होने के आशीर्वाद को देखा है जिससे मुक्ति पाई जा सकती है। प्रभु हमें राह दिखाने वाले हैं और हम मुक्ति पा सकते हैं जैसे हम उनके अटोनमेंट की शक्ति में विश्वास करेंगे। मैं जानता हूं कि प्रभु व्यसन में फंसे हुए को आज़ाद करेंगे क्योंकि अपोस्टल पॉल ने प्रचार किया, मैं मसीह द्वारा सभी चीज़ें कर सकता हूं जिससे मुझे शक्ति मिलती है। ऐसा हो मैं विनम्रता से प्रार्थना करता हूं। ईसा मसीह, जो इन कामों के साथ परेशान हो, ईसा मसीह के नाम में आमेन।
Thank you, brethren.
धन्यवाद भाई। हमारे प्यारे भाई और बहनें, जैसे हम इस कॉन्फ्रेंस का अंत करते हैं, हम टैबरनेकल क्वायर, सैंडी और ड्रेपर के पारिवारिक क्वायर और प्रोवो यूटा मिशनरी ट्रेनिंग सेंटर के प्रीस्टहुड क्वायर और उनके कंडक्टर और ऑर्गन बजाने वालों को सुंदर और प्रेरित संगीत के लिए आभार जताते हैं। हम उन सभी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सभा में भाग लिया है किसी भी रूप में। इस सत्र के आखिरी वक्त हमारे प्यार अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन होंगे। अध्यक्ष मॉन्सन के बाद में क्वायर आखिरी हैं सिंह विनाव और पार्टिंग आएगा।
After the music,
गाने के बाद प्रार्थना प्रेसिडेंट बिशप ऑफ द चर्च बिशप एच डेविड बर्टन द्वारा दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस फिर विलंबित की जाएगी।
This has been a great session.
ये तो बढ़िया सेशन हुआ है। मैंने सत्य को जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है उसके, जब मैं आराम कर सकूंगा। मेरे भाई और बहनों, मेरा दिल आज बड़ा है जैसे मैंने इस जनरल कॉन्फ्रेंस का अंत करते हैं। हमें आत्मिक रूप से पूर्णता मिली है जैसे हमने बयानों को सुना है और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है। मैं विश्वास से कहता हूं कि सभी सदस्य सब दूर मेरे साथ आपको गहरे आभार देते हैं उन सत्यों के लिए जिन्होंने हमें सिखाया गया है। हम बुक ऑफ मोर्मन के शब्दों को सुन सकते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने किंग बेंजामिन के बड़े सरमन को सुना और एक आवाज़ से रोए ये कहते हुए। हम विश्वास करते हैं सभी शब्दों पर जिन्हें हमें हमसे बोला गया है और हम उनकी सत्यता को भी जानते हैं क्योंकि भगवान की आत्मा हर जगह है। मैं आशा करता हूं कि हम कॉन्फ्रेंस की व्याख्या को पढ़ने के लिए समय निकालेंगे जिन्हें इंसान की नवंबर इश्यू में छापा जाएगा क्योंकि वो गहराई से पढ़ने लायक है। ये कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हम यहाँ इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में शांति और सुरक्षा से मिलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण दुनिया भर लोगों तक पहुंचा है, सात समुद्र पार। हम आपसे बहुत दूर हैं पर हम आपकी आत्मा को महसूस करते हैं और आपके लिए हमारा प्यार और आभार जताते हैं। हमारे भाई जो इस कॉन्फ्रेंस में रिलीज करे गए हैं, मैं दिल से आपको आभार जताता हूँ आपके सालों की सेवा के लिए। असंख्यों को भगवान के कामों के लिए आपकी सेवा से आशीर्वाद मिला है। टैबरनेकल क्वायर और दूसरे क्वायर जिन्होंने सेशन में अपने स्वर्गीय संगीत प्रदान किया है, सभी और चीज़ों को बढ़िया और सुंदरता दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके संगीत के गुणों के लिए।
I love and I appreciate.
मैं अपने काउंसलर प्रेसिडेंट हेनरी बी राइंग और प्रेसिडेंट डीटर बी ओटर के लिए आभारी हूँ। वो सच में ज्ञान और समाज के आदमी हैं और उनकी सेवा अमूल्य है। मैं अपने बुलावे को उनकी मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ। मैं कोरम द 12 अपोस्टल के भाइयों से प्यार करता हूँ और 70 और प्रिसाइडिंग बिशप के कोरम के सदस्य को भी, जो निस्वार्थ सेवा करते जाते हैं। मैं उसी तरह से उन आदमी और औरतों के लिए आभारी हूँ जो जनरल ऑक्सिलरी ऑफिसर्स में के रूप में सेवा करते हैं। हम कितने आशीर्वादित हैं कि हमारे पास यीशु मसीह का पुनः स्थापित गॉस्पल है। वो हमें उन प्रश्नों का जवाब देते हैं जैसे हम कहाँ से हैं, क्यों आए और कहाँ जाएंगे जब हम जीवन से गुजर जाएंगे। वो हमारे जीवन को अर्थ देता है। हम एक मुसीबत भरी दुनिया में रहते हैं। हम इस धरती पर आए हैं ताकि हम अपने चुनौतियों को अपनी क्षमता से सामना कर उन पर विजय पाएं और उनसे सीखें भी। हम अंत तक मेहनत हमें करनी है क्योंकि हमारा लक्ष्य अनंत जीवन है स्वर्गीय पिता के साथ। वो हमसे प्यार करते हैं और हमसे इसमें सफलता पाना चाहते हैं। वो हमसे मदद करेंगे, हमारी मदद करेंगे अगर हम उनसे प्रार्थना करें, उनके शब्द पर अमल करेंगे और उनके नियमों का पालन करेंगे। वहाँ रक्षण है, वहाँ शक्ति है।
Safety. Therein is found peace.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मैं तुम्हारा प्रार्थना के लिए, मेरे लिए और दूसरे दुर्जन अथॉरिटीज के लिए जिनके लिए तुम प्रार्थना करते हो, मैं आपको बहुत गहरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम आपके लिए बहुत आभारी हैं ताकि यह भगवान के राज्य को इस धरती पर बनाओ। स्वर्गीय आशीर्वाद आपके साथ हों। आशा है कि आपके घर में प्यार और भगवान की आत्मा आए। आशा है कि आपके गॉस्पल के बयान बढ़े और आपके आपको शैतान के दुष्प्रभावों से रक्षण मिलने रक्षण करो। कॉन्फ्रेंस अब अंत हुई है। जैसे हम अपने घरों की ओर जाते हैं, आशा है कि हमने जो आत्मा यहाँ महसूस की है वह हमारे साथ हर दिन रहे। आशा है कि हम उस दूसरे के लिए दया दिखाएं। आशा है कि हम हमेशा भगवान का काम करेंगे। हम एक दूसरे को और दया दिखाएं और हमेशा भगवान का काम करें। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको विदा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जब हम वापस 6 महीने के समय में मिलेंगे, ये मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ। आमीन।
Oh, Most Holy Father,
मेरे सबसे पवित्र पिता, अब समय आया है कि हम लोग हम प्रार्थना करें इस कॉन्फ्रेंस के सेशन में और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी हम प्रार्थना करने के समय आया है. हम आभारी हैं, हमारे दिल में हमें बहुत आनंद होता है जैसे हम आपके सामने अपने आभार को जताते हैं, जैसे हमने राय पाई है वक्ताओं से, प्रॉफिट्स या रेवलेटरों से हमने उनकी बातों को सुनी है, उनके लिए भी आभारी हैं जैसे उन्होंने उनके द्वारा आपने हमें आपके राज्य को बनाने के लिए निर्देशन दिए हैं. हम अपना भार देते हैं उनके लिए जो हमारे पहले आए हैं. हम आपके बेटे की भेंट के लिए आभार जताते हैं. पुनर्स्थापितकरण जो धर्मशास्त्र है उसके लिए आभार हैं. और इस पवित्र मौके पे हम जैसे अपने अपने रास्ते जाते हैं दुनिया भर, हम ऐसा आशा करते हैं कि हम शांति से करें और जहाँ भी जाएं वहाँ हम सही सलामत पहुँचे. आशा है कि हम अपने जीवनों को बदलें और अपने आप को भगवान के काम में लगाएं. और जिन कुछ महीनों में वापस इकट्ठे हो गए उस समय तक आप हमारी पहली प्रेसिडेंसी को कोर में उस कोरंटल उनको आशीर्वाद देते रहेंगे क्योंकि सेहत और जिनके साथ का वो काम करते हैं उनको भी आप आशीर्वाद देते हैं. आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं जो इन दो दिनों में हुआ है. हम नम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें चीज का. हम ऐसा कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन.
This has been a broadcast of the
180th. इस कार्यक्रम बिना अनुमति वर्जित है. गिरजे की पहली प्रेसिडेंसी दूसरे अथॉरिटीज गिरजे के ऑफिसर में व्यक्तियों को चुना गया और संगीत को मोर्न टैबरनाकल ने प्रदान किया. इस प्रसारण को बॉन इंडस्ट्री द्वारा सामाजिक सेवा के रूप में प्रदान किया जा रहा है. इस कार्यक्रम का बिना अनुमति उपयोग वर्जित है.